नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की एक विशेष अल्पसंख्यक समूह को आरक्षण देने संबंधी कथित टिप्पणी पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायाधीश के आवास पर नकदी बरामदगी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय समुदाय से केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिए निवेश सीमा दोगुना करके 50,000 करोड़ रुपये की। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन के बाद से 1,100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। सऊदी अरब के रियाद में रूस और अमेरिका के अधिकारियों ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत की। और नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार और सीमा रानी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की एक विशेष अल्पसंख्यक समूह को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने की कथित टिप्पणी पर आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर राज्यसभा को दिन भर के लिए और लोकसभा को दो बार स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में सदन की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद 2:15 पर फिर शुरू होने पर हंगामा जारी रहने के बीच सदन ने तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 में लोकसभा के कुछ संशोधनों को स्वीकृति दे दी। विधेयक को राज्यसभा पहले ही पारित कर चुकी है। हंगामा जारी रहने पर राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया कि श्री शिवकुमार ने संविधान बदलने के बारे में कुछ नहीं कहा। उधर लोकसभा में भाजपा के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण वर्ष 1947 में सभी प्रमुख नेताओं ने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने नेता को उनके टिप्पणियों के लिए संवैधानिक पद से हटा देना चाहिए। वित्त विधेयक 2025 लोकसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए आज प्रस्तुत किया गया। विधेयक का उद्देश्य वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करना है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि देश में वस्तु और सेवा कर GST व्यवस्था बहुत जटिल है। उन्होंने कहा कि कर चुकाने वाले आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए।
Viksit Bharat by 2047 is a laudable objective for a quarter century from now. But how does this finance bill begin to get us there? It has taken the government years to finally realize that just 2% of Indians, the hard-working taxpayers, man, have been really carrying this country on their backs. Individual taxpayers, mainly the salaried middle class, were already contributing more than the corporations last year, and yet no action was taken.
भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने कहा कि पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है, लेकिन भारत पिछले 10 वर्ष में एक उज्ज्वल स्थान के रूप में उभरा है।
पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, चाहे IMF का रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो। भारत ने पिछले 10 साल में दुनिया को मात देते हुए अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी की तरफ खींचा। 70 साल में आपने इस देश को $2 trillion की इकोनॉमी दी और हमने 10 साल में उसको लगभग 4.25 trillion में जो है पहुँचा दिया है।
YSR कांग्रेस के PV मिथुन रेड्डी, राष्ट्रीय जनता दल के अभय कुमार सिन्हा, कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला, शिवसेना UBT के अनिल यशवंत देसाई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अमरा राम और RSP के NK प्रेमचंद्रन ने भी चर्चा में भाग लिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ऐसी घटनाओं को रोकने का आह्वान किया है। श्री धनखड़ ने आज संसद भवन में इस मुद्दे पर सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा और विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। सभापति ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करने के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की प्रशंसा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि केंद्र सरकार जनजातीय गांवों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और मोबाइल नेटवर्क सहित बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। ओडिशा के नयागढ़ जिले के कलियापल्ली में आज भारतीय विश्ववासु शबरा समाज के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातियों को सभी केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों के विकास में आगे आने की बात कही है। आज रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त करने के प्रयास में आप सब शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे और राज्यों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
बीमारी एक समझदारी यूविन से टीकाकरण में हो सबकी भागीदारी।
किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े।
यूविन से टीकाकरण में हो सबकी भागीदारी।
एक सुरक्षा की
आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पर लॉगिन करके गर्भवती महिला और 16 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के सभी लाभ प्राप्त करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिए निवेश सीमा दोगुना करके 50,000 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य बदलते बाजार की गतिशीलता का समाधान करना है। नवनियुक्त अध्यक्ष तोहिन कांत पांडे ने बोर्ड की पहली बैठक के बाद कहा कि भारतीय बाजारों में निवेश के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक रखने वाली विदेशी निवेशकों को अब अतिरिक्त खुलासे करने की आवश्यकता होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र ने प्याज पर 20% निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आशीष चौहान ने कहा कि प्याज पर निर्यात शुल्क समाप्त होने से किसानों की उपज बिना शुल्क के वैश्विक बाजारों में पहुंच सकेगी और उन्हें अधिक मूल्य मिल सकेगा।
किसान को लाभकारी मूल्य देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है और अब ये फैसला किया है कि प्याज के एक्सपोर्ट पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उपजाया हुआ प्याज दुनिया के बाजारों में बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के जाए और किसानों को अच्छे लाभकारी मूल्य मिल पाए।
केंद्र सरकार ने संसद के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ता और पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। संसद सदस्यों का मासिक वेतन 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दिया गया है। दैनिक भत्ता 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए और मासिक पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई है। ये वृद्धि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। दिल्ली सरकार पिछली आम आदमी पार्टी के कार्यकाल पर विधानसभा में श्वेत पत्र लाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान ये घोषणा की। इससे पहले श्रीमती गुप्ता ने सदन में निगम के बारे में CAG रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये CAG की तीसरी रिपोर्ट है। भारत ने मेक इन इंडिया पहल के शुरू होने के बाद वर्ष 2023-24 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि प्राप्त की है। इसके साथ ही रक्षा उत्पादन 1,27,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। आज विश्व तपेदिक दिवस है। इस वर्ष का विषय है, हाँ हम क्षय रोग को खात्मा कर सकते हैं, प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कहा है कि सरकार इस वर्ष के अंत तक देश से तपेदिक समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
हमारा वर्ल्ड TB रिपोर्ट जो आया उसमें ग्लोबल डिक्लाइन जो है वो 8.3% है और हमारा डिक्लाइन 7.7% है। ट्रीटमेंट कवरेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 59% टू 85% और अब ट्यूबरक्लोसिस के एलिमिनेशन में इंडिया मॉडल वर्ल्ड इसको मान रहा है और इस इंडिया मॉडल पर चलने की कोशिश कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी के 10,000 आइसोलेट्स को के जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी होने की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य जीनोमिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके टीबी के इलाज में दवा प्रतिरोध से निपटना है।
उन्होंने ये तय किया कि 80% वो मॉर्टेलिटी कम करने में कामयाब रहे, ये उनका प्रयास रहेगा सन 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के, और 90% इसकी मॉर्बिडिटी यानी कि प्रेवलेंस। और हमें इस बात की खुशी भी है और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम पर डाल करके ये तय किया कि हम 2025 के भीतर ही टीबी मुक्त भारत कायम करने में सफल हो पाएंगे।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे टीबी रोग से बचाव और उपचार विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में उप महानिदेशक डॉक्टर उर्वशी बी सिंह तथा नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में श्वसन चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित कुमार शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू की हिरासत को लेकर 5 दिन पूर्व शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद से देश भर में 1,133 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों से विस्फोटक सामान जब्त किया गया है। रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने सऊदी अरब के रियाद में यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। रूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर फेडरेशन काउंसिल कमेटी के प्रमुख ग्रिगोरी करासिन और रूस की संघीय सुरक्षा सेवा के निदेशक के सलाहकार सर्गेई बेसेडा कर रहे हैं। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के 5वें दिन आज पावर लिफ्टिंग में 2 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। एक रिपोर्ट।
पंजाब की सीमा रानी और बिहार के झंडू कुमार ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। सीमा रानी ने एलीट 61 किलो में 97 किलो वजन उठाकर रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस श्रेणी में जैनब खातून ने रजत और एम नाथिया ने कांस्य पदक जीता। इसके अलावा झंडू कुमार ने एलीट 72 किलो में 206 किलो वजन उठाने के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। झंडू कुमार ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि ये अनुभव बेहद खास है।
अपना ही रिकॉर्ड तोड़े हैं। पहला रिकॉर्ड तो हरियाणा का सुधीर कुमार का था, 92 का रिकॉर्ड था। नोएडा में 205 मार के रिकॉर्ड हमने अपना नाम किया। उसके बाद खेलो इंडिया में अपना ही रिकॉर्ड 206 केजी मार के नाम किया।
निशानेबाजों में पेरिस खेलों की पदक विजेता मोना अग्रवाल ने मिक्स्ड 50 मीटर प्रोन SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान के निहाल सिंह ने मिक्स्ड 25 मीटर पिस्टल SH1 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस श्रेणी में अमीर अहमद भट्ट ने रजत और संदीप कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हर कदम एक पहचान है,
जीत के है इरादे हम भारत। पदक तालिका में हरियाणा पहले, तमिलनाडु दूसरे और राजस्थान तीसरे नंबर पर है। विशाखापत्तनम में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ताजा समाचार मिलने तक 16वें ओवर में 4 विकेट पर 171 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की एक विशेष अल्पसंख्यक समूह को आरक्षण देने संबंधी कथित टिप्पणी पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायाधीश के आवास पर नकदी बरामदगी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्यवाही करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय समुदाय से केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिए निवेश सीमा दोगुना करके 50,000 करोड़ रुपए की। और नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार और सीमा रानी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।